नहीं
मर गया
अभी बंद कैसे करने का राधा मेरी धारी राधा मेरी धारी राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय हरिदास ठाकुर की स्वयं से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्रीमद भगवद गीता की गीता मैराथन महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की दाय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरचिलम्बमानम् संस्तिमन्तं पुरुषादनीतम् विहाय साम्रूच्यमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपाखिल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम् प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिता कृष्णं च ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ತಸ್ಯೋರಸಿ ಲಂಬಮಾನ ತಂತಸ್ಯ ಮಂತಂ ಪುರುಷಾದನೀತಂ ವಿಹಾಯ ಸಾಂಭೂತ್ಯ ಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಕ್ತ ಗೋಪ್ಯಶ್ಚ ಗೋಪಾಃ ಕಿಲ ನಂದ ಮುಖ್ಯಾ ಲದ್ವಾ ಪುನಃ ಪ್ರಾಪುರತೀವ ಮೋದ
la आदाय उठाकर मात्रे उनकी माता को प्रतिहत्य हाथों में सौंप दिया। विस्मिता सारे लोग अचंभित थे। कृष्णं च तथा कृष्ण को तस्य असुर की उरसी छाती पर लंबमानं स्थित तम कृष्ण को स्वस्तिमंतम समस्त कल्याण से युक्त पुरुष अदनीतम मनुष्य भक्षी असुर द्वारा ले जाया गया। विहायसा आकाश में मृत्युमुखा मृत्यु के मुंह से प्रमुक्तम अब मुक्त हुए गोप्यः गोपिया च तथा गोपाह वाले कील निसंदेह नंद मुख्या नंद महाराज इत्यादि लब्ध्वा पाकर पुनः फिर प्रापु प्राप्त किया अतीव अत्यधिक मोदम आनंद। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की गोपियों ने तुरंत ही कृष्ण को असुर की छाती से उठाकर माता यशोदा को लाकर सौंप दिया। वे समस्त अशुभों से मुक्त थे। चूंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाए जाने पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी और वह अब सारे खतरों तथा दुर्भाग्य से मुक्त था, इसलिए नंद महाराज समेत सारे ग्वाले तथा गोपियां अत्यंत प्रसन्न थे। तात्पर्य असुर आकाश से पीठ के बल गिरा और कृष्ण उसकी छाती पर बिना चोट आए और किसी दुर्घटना से ग्रस्त हुए बिना खेल रहे थे। आकाश में असुर द्वारा दूर तक ले जाए जाने पर भी कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं थे। वे बड़े आनंद से खेल रहे थे और आनंद में थे। यही है आनंद चिन्मय रस विग्रह। वे हर हालत में सच्चिदानंद विग्रह है, उन्हें कोई दुख नहीं सताता। अन्यों ने भले ही सोचा हो कि वे संकट में थे, लेकिन असुर की छाती इतनी चौड़ी थी कि वे प्रसन्नता पूर्वक उसी पर खेल रहे थे। यह सबसे अधिक आश्चर्य की बात थी कि यद्यपि असुर आकाश में बहुत ऊंचाई तक उन्हें ले गया था, किंतु वे गिरे नहीं। इस प्रकार बालक कृष्ण एक तरह से मृत्यु के मुख से बाल बाल बचे थे। उनके सुरक्षित रहने से वृंदावन के सारे निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रीताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वत्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे। खूब खूब धन्यवाद विशेष माताओं को। यहाँ पर प्रभु जी मेरे पास बैठे लेकिन कीर्तन में मुझे माताओं का आवाज सुनाई दे रहा था, प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा था। तो एक सुंदर प्रसंग पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों में दर्शन करते हुए विचरण कर रहे थे और चलते चलते जब यमुना जी के तट पर पावन श्रीधाम वृंदावन पर पहुंचे तो वहां पर नारद जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक स्त्री अत्यंत सुंदरी बैठकर विलाप कर रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष सोए हुए हैं। और इस आश्चर्य को देखकर नारद जी जब वहां पर गए तो उसको देखते ही वह युवती खड़ी हो गई और कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठन, हे नारद जी आप थोड़ी देर रुकिए और मेरे दुख को दूर कीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि देवी आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध पुरुष सोए हैं वह कौन है और ये सारी अप्सराएं जैसी स्त्री आपकी सेवा कर रही ये सब कौन है। तब वह स्त्री अपना परिचय देते हुए कहती है, हे नारद जी अहम भक्ति रीति ख्यात हूं, मैं साक्षात भक्ति देवी हूं और इमो में तनय ज्ञान वैराग्य नामनो, और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष सोए हुए हैं वो दोनों ही मेरे पुत्र हैं जिसका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो देवी आपकी ऐसी स्थिति, आपके पुत्रों की ऐसी स्थिति कैसे हुई। तो भक्ति महारानी अपना पूरा इतिहास सुनाती है कि हे नारद जी उत्पन्न साहम द्रविड़े, द्रविड़ प्रदेश दक्षिण भारत में मेरी उत्पत्ति हुई और फिर कर्नाटक के वृद्धिम गत, वहां से मैं आगे चलकर आई तो कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई अर्थात वहां पे मेरा इतना प्रचार हुआ कि कर्नाटक में आकर मैं एकदम वृद्धि प्राप्त की मैंने। और फिर वहां से चलते चलते जब महाराष्ट्र में आई तो वहां पर भी क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र वहां पर भी मेरी वृद्धि हुई क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे भक्त हुए नामदेव जी तुकाराम जी इत्यादि जिसने बहुत भक्ति का प्रचार किया और आगे भविष्य में भी गिरधारी मंदिर के भक्त लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन करके बहुत प्रचार करेंगे मेरा। इसलिए क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में भी मेरी वृद्धि हुई। और फिर वहां से चलते हुए जब मैं गुर्जर प्रदेश में पहुंची तो गुर्जरे जीर्णताम गत, वहां पर मेरा नाश हो गया अर्थात मैं जर्जर हो गई, वहां पर मेरा किसी ने स्वीकार नहीं किया। और फिर वहां से चलते चलते जब मैं यहाँ पर आई श्रीधाम वृंदावन में तो यहाँ आते ही मैं तो एक अत्यंत प्रसन्न नवयुवती और सुंदरी हो गई। लेकिन हे नारद जी मेरे ये दोनों पुत्र उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई और उसका वृद्धत्व दूर नहीं हुआ, तो आप ही बताइए कि हम लोग अब तक तो बहुत प्रसन्न, हम तीनों मैं और मेरे दोनों पुत्र अब तक तो बहुत प्रसन्न और आनंद पूर्वक रहते थे लेकिन अचानक ये क्या हो गया कि मेरे पुत्रों की यह स्थिति हो गई और मैं भी अत्यंत दुखी हूं। तब नारद जी कहते हैं कि देवी श्रुणुस्व अवहिता बाला युगो यम दारुण कली, हे देवी उसका कारण यह है कि यह भयंकर कलयुग है और इस कलयुग में न तो आपका कोई ग्राहक है न आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक है अर्थात इस घोर कलयुग में न तो कोई भक्ति का स्वीकार कर रहा है और न ज्ञान प्राप्त कर रहा है और न तो किसी में वैराग्य है, इसलिए आप तीनों की यह स्थिति हुई है। आपका कोई ग्राहक नहीं इसलिए आप जीर्ण जर्जर हो गए, लेकिन धन्य है इस वृंदावन धाम में, धाम को कि जहां पर आते ही हे देवी आप एकदम प्रसन्न हो गए। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, इस वृंदावन धाम को धन्य है जहां पर भक्ति महारानी निरंतर आनंद और प्रसन्नता पूर्वक नाचती रहती है। और हम लोगों को स्वाभाविक ही अनुभव है कि यहाँ पर रहने पर मन कृष्ण में लगाना पड़ता है, प्रयास करके मन को लगाना पड़ता है, और वृंदावन जाने से मन लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही कृष्ण में लग जाता है। इसलिए कहते कि धन्यम वृंदावनम। तो हे देवी इसमें तुम्हारा या तुम्हारे पुत्रों का कोई दोष नहीं है, यह युग का दोष है कि जिसके कारण तुम्हारी यह स्थिति हुई है, लेकिन फिर भी हे देवी आप श्री कृष्ण चरणान भोज स्मर दुखम गमिष्यति। आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, आपका सब दुख नष्ट हो जाएगा। और आप तो देवी कृष्ण को कितनी प्रिय है आज जानती नहीं है कि त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिक। कृष्ण को अपने प्राण से भी हे देवी आप प्रसन्न है। त्वया आहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेषु गृहेषु, आपके बुलाने से भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस आदिवासी और भिलनी भील की जाति में जन्मी हुई शबरी के घर पर भी आपके बुलाने से भगवान आ गए, और आपके ही बुलाने से असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद जी के यहाँ पर भगवान आ गए। और हे देवी आपके ही बुलाने से दासी के घर में जन्मे हुए, दासी पुत्र के रूप में जन्मे हुए विदुर जी के यहाँ पर बिना बुलाए ही श्री कृष्ण आ गए। इसलिए हे देवी त्रिभुवन में सबसे भाग्यशाली जीव वह है कि जिसके पास आप है, हे भक्ति देवी जिसके हृदय में आप है। भले ही उसके पास धन नहीं है, संसार की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जिसके पास हे देवी आप है, जिसके हृदय में आप है, वही भाग्यशाली है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हदीयेषां श्रीहरि भक्ति रेका, हरिरपि निज लोक सर्वथातो विहाय प्रविशति हदीतेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। हे देवी जहाँ पर आप है वहाँ पर उस जीव के हृदय में भक्ति सूत्रोपनद्ध, कृष्ण भक्ति रूपी धागे से उसके हृदय में बंध जाते हैं, प्रयास करने पर भी वह जा नहीं पाएंगे। और इस कलयुग में तो हे देवी आपके सिवा इस संसार के जीवों को मुक्त करने वाला कोई है ही नहीं। कहते कि सतयुग त्रेता द्वापर इत्यादि युगों में तो ज्ञान वैराग्य योग इत्यादि अनेक साधन थे जो जीव को इस भव सागर से मुक्त कर सके, पार कर सके, लेकिन कलो तो केवला भक्ति ही। लेकिन कलयुग में तो हे देवी आप एक ही है जीव को इस संसार से मुक्त करने वाली। और यह सोचकर ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए ही अपने सच्चिदानंद विग्रह से आपको प्रकट किया है। नारद जी अब भक्ति महारानी को उसका प्रागट्य बता रहे हैं, उसके दुख को दूर करने के लिए। कहते कि परमानंद चिन्मूर्ति त्वाम ससर्ज ही सुंदरी कृष्ण वल्लभान, परमानंद मूर्ति भगवान सच्चिदानंद सद्रूप अपने देह से त्वाम ससर्ज तुम्हारा सर्जन किया है। भगवान कृष्ण ने अपने श्री विग्रह में से हे देवी तुम्हारा सर्जन किया, और जब तुम्हारा प्रागट्य हुआ उस समय हे देवी आपने हाथ जोड़कर भगवान को पूछा था कि हे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। बद्धांजलि त्वया पृष्टम, अंजलि बांधकर आपने पूछा था क्या, तो कहते किम करोमि, हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। तब भगवान ने आपको कहा था कि हे देवी, तदा आज्ञापयत कृष्ण, तब भगवान श्री कृष्ण ने आपको आज्ञा दी थी क्या, मत भक्तान पोषयति, हे देवी आप मेरे भक्तों का पोषण कीजिए। भगवान ने भक्ति महारानी को आदेश दिया कि हे देवी आप मेरे भक्तों का पोषण कीजिए, और अंगीकृत्य त्वया, जब आपने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया तब कृष्ण प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नो अभूत हरि तदा, भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और कहते कि हे देवी आपने मेरी बात मान ली, आपने मेरी आज्ञा का स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं प्रसन्न होकर मुक्तिम दासी तुभ्यम ददामि, इस मुक्ति को आपकी दासी के रूप में मैं दे रहा हूँ। मुक्तिम दासी ददो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य काउ इमे, और इस ज्ञान वैराग्य को मैं आपको पुत्र के रूप में दे रहा हूँ। तो भगवान ने इस मुक्ति को भक्ति की दासी बना दिया और ज्ञान वैराग्य को उसके पुत्र बना दिए, यह इतिहास नारद जी भक्ति महारानी को याद करा रहे हैं और कहते हैं कि हे देवी तभी से तुम वैकुंठ में रहकर वहां पे भक्तों का पोषण करती हो, और अपनी प्रतिछाया के रूप में इस पृथ्वी पर रहकर यहाँ पर भी कृष्ण के भक्तों का पोषण करती हो, और हे देवी अगर तुम्हारी महिमा कोई समझ ले तो उसके लिए कलिना सदृश कोपी युगो नास्ती वरानन, तुम्हारी महिमा जो कोई सुन ले समझ ले तो उसके लिए कलयुग जैसा सुंदर श्रेष्ठ युग कोई नहीं है, और इसलिए तस्मिन स्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने, और इसलिए हे देवी इस घोर कलयुग में मैं घर घर में और जन जन में आपकी स्थापना करूंगा। नारद जी कह रहे हैं कि तस्मिन इस घोर कलयुग में स्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने, घर घर में और जन जन में आपकी स्थापना करूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया घर घर में और प्रत्येक व्यक्ति में आपकी स्थापना नहीं कर पाया हे भक्ति देवी, तदा नाहम हरेर दास हो, तब मैं अपने आप को कृष्ण का दास नहीं कहूंगा। नारद जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हे देवी इस घोर कलयुग में घर घर में और जन जन में अगर आपने मेरी आपकी स्थापना में नहीं कर पाया, त्वाम न प्रवर्त, आपका प्रवर्तन नहीं कर पाया, तदा नाहम हरेर दास हो, तब मैं अपने आप को कृष्ण का दास नहीं कहा होगा। क्या लगता है इस समय को देखकर नारद जी की इस प्रतिज्ञा का क्या होगा? संसारी लोगों ने भी सामने प्रतिज्ञा ले ली है कि हम नारद जी की प्रतिज्ञा सत्य होने नहीं देंगे। गेहे गेहे जने जने की बात तो जाने दीजिए, लगता है कि एवरेज निकालने पर 1,00,000 में भी एक कृष्ण भक्त शायद मिले, तो भारत में तो शायद 1,000 में एक मिल जाएंगे, लेकिन बाहर सब लाखों में भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि अगर इस कलयुग में घर घर में जन जन में आपकी स्थापना नहीं की तो मैं अपने आप को कृष्ण का दास नहीं कहूंगा। तो भले ही नारद जी ने यह प्रतिज्ञा ली और नारद जी अपनी प्रतिज्ञा को सत्य नहीं कर पाए, लेकिन भक्ति के प्रचार का जो नारद जी के अंदर यह उत्साह है, उसका जोश है, उसको देखकर भक्ति महारानी प्रसन्न हो गए। नारद जी भले ही अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण शायद न कर पाए हो, लेकिन उसकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर, उसके उत्साह को सुनकर, भक्ति के प्रचार का यह उत्साह जोश, भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि भक्ति रुवाच, भक्ति कह रही, कौन भक्ति, जिसके लिए कह रहे कृष्ण वल्लभाम, भगवान कृष्ण की भी अधीश्वरी अर्थात श्री कृष्ण भी जिसके वश में हो जाते हैं वह भक्ति महारानी कह रही है, अहो नारद धन्य होसी विरक्ता नाम शिरोमणि। अहो नारद जी, धन्य है आपको कि आपके हृदय में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा और निष्ठा है, इसलिए हे नारद जी, न कदाचिन विमुंचामि, मैं आपको छोड़कर कभी जाऊंगी नहीं, कोई भी स्थिति कुछ भी हो जाए लेकिन आपके हृदय से मैं कभी जाऊंगी नहीं, चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, मैं निरंतर आपके चित्त में आपके हृदय में बनी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए हे नारद जी, मैं आपके हृदय से आपके चित्त से कभी एक क्षण के लिए भी जाऊंगी नहीं, चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, हमेशा के लिए निरंतर मैं आपके चित्त में रहूंगी। तो इससे स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति मन में संकल्प कर ले कि हम भक्ति का प्रचार करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, भगवत गीता के बिना तो प्रचार होगा नहीं, लोग गीता को समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब उसके हृदय में भक्ति आएगी ना। तो इसलिए जब घर घर और जन जन में हम भी प्रयास करेंगे कि हम गीता को बांटेंगे, गीता को पहुंचाएंगे, और फिर भले ही वह लोग गीता को पढ़े या न पढ़े, उसके अंदर भक्ति आए या न आए, लेकिन हमारा यह प्रयास देखकर भक्ति महारानी हम पर अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट है, उत्साह देखकर भक्ति महारानी, भले ही नारद जी ने कुछ किया नहीं और हो सके ऐसा लग भी नहीं रहा है इस कलयुग में, लेकिन उत्साह, भक्तों का उत्साह देखकर भक्ति महारानी कह दिए कि मैं आपके चित्त को, ऐसे जो मेरे भक्त है, ऐसे जो कृष्ण के भक्त है कि जिसके अंदर मेरे प्रचार की भावना है, मेरे प्रचार के लिए उत्साह है, ऐसे भक्तों को मैं कभी भी छोड़कर जाऊंगी नहीं। तो यही एक सरल भक्ति, जिसके लिए कहा कि संसार में सबसे जो कोई दुर्लभ वस्तु है तो वह क्या है, कृष्ण के चरणों में भक्ति। भ्रमता ऊपर यद न लभ्यते, नारद जी व्यास जी को उपदेश देते समय कहते हैं, हे व्यास जी, आपने शास्त्रों में जो जो अनेक प्रकार के सकाम कर्मों का वर्णन किया है, लेकिन वह तो जीव को ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक चले जाने पर कर्म के अनुसार जो भी उसको मिलना होगा मिल ही जाएगा, लेकिन भक्ति कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको उपदेश देना चाहिए था भक्ति का, और इसलिए आप भागवत की रचना कीजिए। तो ऐसी दुर्लभ भक्ति इस सरल विदेश एक महीने में सिर्फ प्रयास करने से, गीता बांटने से, जो दुर्लभाती दुर्लभ है वह सरलता से प्राप्त हो जाएगी। और प्रभुपाद जी ने तो हम लोग सुनते ही, और विशेषकर मैराथन मास में, कि सर्वत्र यही कहा है कि मुझे प्रसन्न करना है तो गीता बांटो। और भगवान भी भगवत गीता को पूर्ण करते हुए क्या कहते हैं, यह इदम परमम गुह्यम, यह मेरा जो गुह्य गीता का ज्ञान है, मत भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे भक्तों को सुनाता है संसार में, जो इसका प्रचार करता है, तो भक्ति मई पराम कृत्वा, मेरी पराभक्ति की उसको प्राप्ति होगी, और मयेवेश्य असंशय, और मुझको अवश्य प्राप्त कर लेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। और न तस्मात मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतम, और ऐसा जो भक्त है जो मेरे इस गीता के ज्ञान को संसार में वितरण करता है, तो उसे प्रिय कोई मुझे, न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतम, उससे प्रिय मुझे कोई भक्त नहीं है इस संसार में, और भवितावान भूय, और भूतकाल में हुआ भी नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं, जो इस मेरे गुह्य ज्ञान का प्रचार करता है, संसार के लोगों में वितरण करता है। और ये गीता एक ऐसा शास्त्र है कि हमारे परम तथा कह रहे थे कि आप किसी भी समय दे सकते हो, शुभ अवसर में भी किसी को दे सकते हो और अशुभ अवसर में भी किसी को दे सकते हो। किसी व्यक्ति की मानो कुछ शादी हो, या बर्थडे पार्टी हो या कुछ उद्घाटन हो, ओपनिंग हो, कहीं पर भी भगवद गीता गिफ्ट में दे सकते हैं। आजकल लोग गिफ्ट में क्या देते हैं, बुके फूलों का बनाया हुआ, उसमें कुछ होता नहीं है, 5-10-15 फूल होते हैं, लेकिन भाव क्या होता है, 500-1000 रुपये। लेकिन भगवद गीता दिया और वो कितने समय हाथ में लेंगे और रख देंगे, बाद में सीधा कचरे में जाएगा। तो इससे तो अच्छा है सिर्फ 100 रुपये वाला भगवद गीता दे दिया जाए तो जीवन में तो कभी पढ़ेगा ना। और मान लीजिए उसने नहीं पढ़ा तो उसका संबंधी को, उसका पुत्र या कोई भी, एक बार तो उस गीता को खोलकर उसका एक पेज तो पढ़ेंगे ना। और अगर एक भी वाक्य, एक भी श्लोक इस गीता का समझ में आ गया तब उसके उद्धार में भी कुछ कहना नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने तो गीता जी की महिमा में वहां तक कह दिया कि जिसने जीवन में एक बार भगवद गीता का अध्ययन किया है तो यमराज के दूतों की क्या सामर्थ्य है कि उस जीव का नाम भी अपनी जीवा से ले सके, उसको पकड़ना या उसके पास जाने की बात तो अलग रही, उसका नाम भी। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृद पियस्य मुरारी समर्चा तस्य यम किं कुरुते चर्चा। भगवत गीता किंचित धीता तस्य यम किं कुरुते चर्चा। किंचित एक बार जिसने भगवत गीता पढ़ी है तो तस्य यम किम कुरुते चर्चा, यमराज के दूत क्या उसके विषय में बोल सकते हैं। ऐसी यह अद्भुत महिमामय भगवद गीता और हमारे लिए विशेष करके प्रभुपाद जी के फॉलोअर के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। सिर्फ एक महीना प्रयास करने का है। तो आइए आज के प्रसंग में, यहाँ पे प्रसंग चल रहा है त्रिनावर्त का उद्धार, वध नहीं उद्धार। जब गोकुल में एक बार मैया यशोदा, एक दिन लिखा है, एक दिन अर्थात जब भगवान कृष्ण 1 साल के थे तब की यह घटना है। यहाँ पे वर्णन नहीं है लेकिन आगे 26वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी एक ही उंगली पे गोवर्धन को धारण किया, तो बाद में सब ब्रजवासी आपस में मिलकर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हे नंदी, यह तुम्हारा लाल कितना अद्भुत, कितना इसमें पराक्रम है। परस्पर चर्चा नंद बाबा को कह रहे कि जब यह 6 दिन का था तभी पूतना नाम की भयंकर राक्षसी आई और उसके प्राणों के साथ, उसके दूध के साथ उसके प्राण भी पी लिए इसने। और बाद में जब यह बालक 1 महीने का हुआ तो वह शकट के नीचे सोया था तो अपने पैरों की ठोकर से शकट को उलट दिया। उसमें शक्तासुर था वो तो ये लोग जानते नहीं थे ब्रजवासी, तो सिर्फ शकट को उलट दिया। और जब 1 साल का हुआ, कहते हैं कि एक हायन आसिनो ह्रिय मानो विहायता देचेन तृणावर्त। और जब यह बालक 1 साल का था तब बवंडर के रूप में आया हुआ महान असुर तृणावर्त इसको उठाकर ले गया। तो इसे जान सकते कि यह घटना श्री कृष्ण एक हायन 1 साल के थे तब की है। तो माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोदी में लाड़ प्यार करा रही थी, जैसे माता अपने बच्चों को लाड़ कराती है ऐसे। तब आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखकर कृष्ण कहते कि मैया, मुझे भी उड़ना है इन लोगों की तरह, इन पंछियों की तरह। तो यशोदा जी कहती है कि लाला, वो तो पक्षी उड़ सकते हैं, मनुष्य नहीं उड़ सकते। नहीं मैया, मुझे उड़ना ही है। तो जीत पकड़ ली, तब क्या करे। तब यशोदा मैया ने लाल को हाथ में लेकर दोनों हाथ से ऐसे उछालने लगी। और जब भगवान की लीला शक्ति माया शक्ति ने देखा कि हमारे स्वामी आकाश में उड़ना चाहते हैं, आकाश की सैर करना चाहते हैं, तब कंस को प्रेरित करके, कंस के हृदय में हृदय को प्रेरित किया और कंस ने उसी समय अपने सेवक त्रिनावर्त नाम के राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए व्रज में भेज दिया। और इधर कृष्ण सोचने लगे कि अगर वह असुर आएगा और मैया मेरे साथ होगी तो वह मैया को भी उड़ाकर ले जाएगा, तो इसलिए मैया को अपने से अलग करने के लिए कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा दिया। और माता यशोदा सोचने लगी कि अचानक क्या हो गया कि इतना भारी लग रहा है, तब उसने अपनी गोदी से कृष्ण को नीचे रख दिया और फिर अपने काम में कार्य में लग गई। और उसी समय यह त्रिनावर्त देव्य भयंकर सचन बवंडर के रूप में आया और उसके आते ही पूरा ब्रज धूलि से धूल धूल हो गया और इतना अंधकार हो गया कि मानो रात्रि जैसा, कहीं पर भी लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, सर्वत्र धूल ही है। बवंडर जिसको क्या कहते हैं हमारे गुजराती में, तो वनटोड़ी होते हैं, तो सब धूल धूल हो गया। और इस बवंडर को देखते ही माता यशोदा अपने लाल को घर के भीतर ले जाने के लिए आई, जहां पर छोड़कर गई थी वहां पर, और आकर के देखा तो कृष्ण वहां पर नहीं है। तो माता यशोदा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी कि मैंने अपने लाल को क्यों अकेला छोड़ा, जब जब भी मैंने इसको अकेला छोड़ा है तब तब इसके ऊपर विपत्ति आई है। पहले जब अकेला छोड़ा तो पूतना राक्षस इसको लेकर भाग गई, और फिर जब शकट के नीचे इसको अकेला सुला दिया तो शकट उलट गया, आज जब इसको अकेला छोड़ा तो यहाँ से कौन ले गया, इस प्रकार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी माता यशोदा। लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाया क्योंकि उस बवंडर का प्रचंड ही इतना था, वेग ही इतना था। और फिर धीरे धीरे जब वह वेग कम हुआ, धूली उड़ना थोड़ा कम हुआ, तब आसपास गोपियों ने सुना यशोदा जी के विलाप को, तो सब एकत्र हो गए और सीधी नंदालय में, नंद भवन में आ गई। और यहाँ पर आकर देखा यशोदा विलाप कर रही है और वह भी अपने लाल के लिए, तो समझ गई कि कृष्ण को कुछ हुआ है। तो सब ढूंढने लगी, सोचा कि इस बवंडर को देखकर डर के मारे कहीं पर जाकर छिप कर बैठ गया होगा। तो पूरे भवन में सब गोपियों ने आसपास की सब जगह पर देखा, लेकिन कृष्ण को कहीं पर भी नहीं पाया। और तब वह सब भी रुदन करने लगी। और इधर त्रिनावर्त कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया और सोचने लगा कि जो कार्य पुतना ने और शक्तासुर ने नहीं किया वह मैंने कर दिखाया, वो लोग भी इस बालक को उठा नहीं पाए लेकिन मैंने इसको बड़ी सरलता से उठा लिया, अब इसको मथुरा में ले जाकर महाराज कंस को सौंप दूंगा, फिर उसको जो भी करना होगा करेंगे। तो ऐसा सोचकर वह आकाश में उड़ रहा था और फिर जब ऊपर गया तब तक तो कोई मुश्किल ही नहीं थी, लेकिन जब मथुरा की ओर मुड़ा तब ही भगवान ने अपना वजन, क्योंकि अभी समय नहीं है मथुरा जाने का, यहाँ पर ही रहना है, तो जैसे ही मथुरा की ओर मुड़ा तो कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा दिया। और इतना वजन बढ़ गया कि उस त्रिनावर्त की गति अवरुद्ध हो गई, ऊपर नहीं जा सका। और वजन इतना ज्यादा हो गया कि अब वो उसको सहन करने भी असमर्थ हो गया, तो उस बालक को छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगा। और जैसे वो छुड़ाने का प्रयास करने लगा तो कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। वैसे भी स्वभाव होता है बालकों को, कोई पकड़ता है और फिर छोड़ने का प्रयास करता है, या तो डर जाता है गिरने की वजह से, गिरने का डर लगता है तो पकड़ने वाले का गला पकड़ लेते हैं बालक को, तो ऐसे ही गिरने के भय से कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और जैसे ही वो प्रयास करता गया उसको छुड़ाने के लिए ऐसे ही पकड़ मजबूत करते गए और अंत में इतना उसका गला दबा दिया कि निर्गत लोचन उसकी आंखों की पुतलियां बाहर निकल गई, उसका वेग नष्ट हो गया और वह ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा। नंदालय के बाहर एक बड़ी शिला थी उसके ऊपर वह गिरा और उसके शरीर में से सब मांस इत्यादि सब बिखर गया। उसका शरीर पूरा विशीर्ण सर्व अव्ययम करालम, उसके भयंकर बड़े बड़े सब अवयव शरीर के अंग फट गए। जैसे पका हुआ फल पेड़ के ऊपर से गिरता है और फट जाता है ऐसे ही उसके शरीर में से सब चर्बी रुधिर इत्यादि निकल गया। और भगवान पीठ के बल पर गिरा वो तुणावर और उसकी छाती के ऊपर कृष्ण बिल्कुल निर्भय होकर खेल रहे, प्रसन्नता पूर्वक जैसे पूतना की छाती के ऊपर खेल रहे थे उसके वध के बाद, ऐसे यहाँ पर भी एकदम प्रसन्न होकर खेल रहे हैं। रूपा जी लिखते हैं कि यही आनंद चिन्मय रस विग्रह है, विग्रह अर्थात स्वरूप, यही भगवान का आनंदमय स्वरूप है कि किसी भी स्थिति में उसको भय नहीं होता है। नहीं तो इतना बड़ा असुर आकाश में इतना ऊपर लेकर गया था और वहां से नीचे गिरे और फिर भी बालक है 1 साल के, लेकिन उसको किसी प्रकार का भय नहीं, एकदम प्रसन्नता पूर्वक खेल रहे। अरे उसको क्या भय होगा, उसका नाम एक बार जीवन में लेने वाला व्यक्ति भी भय से मुक्त हो जाएगा तो उसको क्या भय लगेगा। सूत जी भागवत के प्रारंभ में कहते हैं नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों को, आपन्न संस्कृति घोराम यन नाम विवशो गृणन ततः सज्जो विमुच्य। इस घोर जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में फंसे हुए लोग यन नाम विवशो गृणन, विवशता पूर्वक भी कृष्ण का नाम ले ले, प्रेम से नहीं, सावधानी से नहीं, किसी के कहने से नहीं, विवशता पूर्वक गलती से भूल से नाम अगर कृष्ण का ले ले ततः सज्जो विमुच्य, तुरंत ही संसार चक्र से संसार के बंधन से वह सज्ज तुरंत ही मुक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस नाम का प्रभाव ऐसा है कि इस नाम के बल से इस नाम को सुनकर साक्षात भय का मूर्तिमंत स्वरूप मृत्यु महाकाल भी इस नाम से डरते हैं। यद विभेति स्वयं भयं, साक्षात मृत्यु भी इस नाम से डरता है। और इसलिए तो यमराज जी अजामिल वाले प्रसंग में अपने दूतों को कहते कि हे मेरे पुत्रों, अगर आप लोगों को सुरक्षित रहना है तो कभी भी जिसके मुख में कृष्ण का नाम है उसके पास नहीं जाना। जिसके मुख में कृष्ण का नाम है, जो अपनी वाणी से कृष्ण के गुणों का गान करते उसके पास अगर आपको सुरक्षित रहना है तो नहीं जाना, तो किसके पास जाना। तो यमराज जी कहते जिह्वान वती भगवान गुण नाम ध्येयम्, जो अपनी जिह्वा से भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण नहीं करता है, चेतस न स्मरति तस्चरणारविंदम्, और जो अपने मन से कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते है और कृष्णाय नो नमति यत शिरये कदापि, और जो अपने मस्तक को कृष्ण के चरणों में जीवन में एक बार भी नहीं झुकाया है, जिसने कृष्णाय नो नमति यत शिर एकदापि, जीवन में एक बार भी गिरधारी जी के चरणों में जिसने अपना मस्तक नहीं झुकाया है, तान आनयत्वम, उसको पकड़ पकड़ कर यहाँ पर लाओ। लेकिन जिसके मुख में कृष्ण का नाम है वहां से तो तुम दूर ही रहना। तो जिसके नाम की इतनी महिमा है उसको कैसे भय लगेगा। और इसीलिए कहते हैं कि एकदम आनंद से खेल रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर भगवान सोचे कि मुझे भयभीत होना है, दुखी होना है, तो भी नहीं हो सकते। जानबूझकर दुखी होना चाहे, भयभीत होना चाहे, तब भी नहीं हो सकते। लक्ष्मी जी अगर चाहे कि मुझे भिखारी होना है तो क्या शक्य है। और सूर्यदेव चाहे तो मुझे अंधकार का दर्शन करना है, ये हो नहीं सकता है। ऐसे ही कृष्ण चाहे कि मैं भयभीत हो जाऊं तो ये भी हो नहीं सकता है। तो इस तरह भगवान कृष्ण उस त्रिणावत की छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, और जब गोपियों ने देखा प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिता, एकदम विस्मित हो गए कि इतने बड़े असुर के ऊपर से गिरने पर भी इस बालक को कुछ चोट नहीं आई, नहीं तो ये कुछ दुखी है, रड़ रहा है, तो विस्मित है, एकदम विस्मित हो गए। और प्रादाय उसको ले लिया, कहां से, तस्य उरसी लंब मानम, उस त्रिणावर्त के छाती पर बैठे हुए खेल रहे उस कृष्ण को प्रादाय गोपियों ने ले लिया और मैया यशोदा को दे दिया। और तम स्वस्ति मंतम पुरुषाद नीतम विहायता मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, और जब देखा कि यह पुरुषाद अर्थात पुरुषों को भी खा जाने वाले असुर के द्वारा आकाश में ले जाए जाने पर भी एकदम स्वस्ति मंतम, बिल्कुल स्वस्थ और पूर्ण स्वस्थ रूप से यहाँ पर वापस आ गया, मानो मृत्यु के मुख से यह बालक वापस आ गया। और यह देखकर गोप्यास्त गोपाह किल नंद मुख्या, नंद महाराज इत्यादि सब गोप और सभी गोपिया प्रापुर अतीव मोदम, अत्यंत प्रसन्न हो गए, अपने बालक को एकदम स्वस्थ और सुरक्षित देखकर सब ब्रजवासी एकदम प्रसन्न और आनंद मग्न हो गए। और यह त्रिणावर्त उसको भगवान के चरणों के स्पर्श से संसार के सभी बंधन उसके कट गए और भगवान के धाम को प्राप्त किया। ब्रह्म विवर्त पुराण में इस त्रिणावर्त के पूर्व जन्म की कथा आती है। लिखा है कि वह पांड्य देश का एक राजा जिसका नाम था सहस्त्राक्ष, और वह राजा एक दिन काम मोहित होकर गंधमादन पर्वत की घाटियों में एक सुंदर पुष्प उद्यान था, और वहां पर हजारों हजारों स्त्रियों को साथ में लेकर वह राजा विहार कर रहा था। और उसी समय वहां से अपने हजारों हजारों शिष्यों को साथ लेकर दुर्वासा जी निकले। दुर्वासा जी इस पृथ्वी लोक से कैलाश पर जा रहे थे भगवान शंकर के पास, उसके मुख से भागवत सुनने के लिए अपने शिष्यों को साथ में लेकर जा रहे थे, और उसी रास्ते से निकले। और जब देखा इस राजा को कि इतना निर्लज्ज हो गया कि संसार में खुले में इस तरह स्त्रियों के साथ विहार कर रहा है, एकदम दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। आज तो ये सब बात सामान्य हो गई है, जहां पर भी देखेंगे ऐसे दृश्य देखने, और बाहर की बात जाने दीजिए, घर में भी लोग बैठकर अपने परिवार के साथ टीवी में ऐसे दृश्य सब देखते रहते हैं, स्त्री पुरुष सब गाना गा रहे, नाच गान कर रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसी बात को बहुत घटिया समझा जाता था, और ऐसे देखा तो दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधित हो गए और कहा कि अरे निर्लज्ज दुष्ट, इस तरह मर्यादा को छोड़कर स्त्रियों के साथ विहार कर रहा है, तेरा यह कार्य मनुष्य जैसा नहीं है, राजा जैसा तो है ही नहीं, मनुष्य जैसा भी नहीं है, असुरों जैसा तेरा कार्य है, इसलिए जा, शाप दे रहा हूं कि तू असुर हो जा। और जब शाप दिया तो उस राजा की बुद्धि ठिकाने पर आ गई, दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उसके पास अनेक प्रकार से क्षमा मांगने लगा। और तब दुर्वासा जी ने कहा कि राजा तू असुर तो होगा, लेकिन जब द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण इस कराधाम पर प्रकट होंगे तब उसके चरणों के स्पर्श से तुझे इस आसुरी शरीर से तो मुक्ति मिलेंगी, लेकिन वह भगवान अपनी कृपा करुणा से तुझे अपना धाम प्रदान करेंगे। तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही प्रसंग आगे दो अध्याय को छोड़कर दसवें अध्याय में भी आएगा कि नारद जी एक बार कैलाश की घाटियों में से विचरण करते हुए जा रहे थे, और वहां पर उसने देखा कि मंदाकिनी के जल के अंदर कुबेर जी के दो पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव दोनों मदांध होकर अनेक प्रकार की अप्सराओं को साथ में लेकर जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। और यदृच्छया देववश नारद जी वहां से निकले उसी रास्ते से, और नारद जी को आते हुए देखते ही उन सब स्त्रियों ने तो पानी में से जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकल गई और लज्जा के कारण अपने वस्त्र पहन लिए। लेकिन ये दोनों नलकुबेर और मणिग्रीव देख रहे हैं कि कोई संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वह उस सरोवर से न तो बाहर निकले और न ही उसने अपने शरीर को ढका। इस दृश्य को देखकर नारद जी सोचने लगे कि ये लोग धन के मद में कितने अंध हो गए हैं। वैसे कुबेर जी के पुत्र जो देवताओं के धनाध्यक्ष और ऐसे बड़े व्यक्ति के पुत्र होकर सामान्य मर्यादा भी चूक गए, साधुओं का आदर करना नहीं जान रहे तो ये किसका आदर करेंगे, और इस तरह इस पाप प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। तो नारद जी के हृदय में करुणा दया प्रकट हो गई कि अरे भले ही ये लोग देवताओं के शरीर में है, लेकिन आज जो ये कार्य कर रहे हैं उसके फल स्वरूप उसको भविष्य में कौन सी दुर्गति, कौन से अधम शरीर में जाना पड़ेगा, इसकी क्या दुर्गति होगी। इस बात को सोचकर नारद जी अत्यंत दुखी हो गए और उसके हृदय में करुणा आ गई। यही संसारी लोगों में और साधुओं की दृष्टि में यही भेद है। संसार के लोग जब किसी को देखते हैं ऐश्वर्य में मत, धनवान व्यक्ति है, एकदम सुखी है, मौज से रहता है, तो क्या सोचते हैं, ओह कितना भाग्यशाली है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी गाड़ियां है इसके पास, इसके समान कोई भाग्यशाली नहीं है, संसारी लोग ऐसा सोचते हैं। और उसी को, उसी धनवान व्यक्ति को अगर साधु लोग देखते हैं तो मन में क्या सोचते हैं, अरे रे ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके ऐसे ही भोगों में लगा हुआ है, मौज शौक में लगा हुआ है, अरे आगे इसकी क्या दुर्गति होगी। तो साधुओं को उसको देखकर करुणा उत्पन्न होती है, उसी को देखकर संसारी लोग अपना भाग्य समझते हैं कि कितना भाग्यशाली है। तो यही संसारी लोग और साधुओं की दृष्टि में भेद है। तो नारद जी सोचने लगे कि अब क्या करें, इसका भी उद्धार हो जाए, इसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए क्या करें। तो सोचा कि अगर इसको उपदेश देंगे और कहेंगे कि भाई बैठकर महामंत्र जपो, हरे कृष्णा 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 हरे राम ये तो होगा नहीं, इससे उपदेश भी नहीं सुनेंगे, कुछ भजन भक्ति भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे घोर रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के जीव है, उसको न तो उपदेश अच्छा लगता है न तो भगवान का भजन भक्ति अच्छी लगती है। क्योंकि महाराज जी के मुख से एक बार सुना था कि वृंदावन के महान संत भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एक बार जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठकर, तो रास्ते में ग्रीष्म का समय था और ठीक दोपहर का समय था, धूप भी अत्यंत थी, और ऐसे में वो कुछ काम से जा रहे थे गाड़ी में बैठकर, बड़ी गाड़ी थी। तो रास्ते में एक जगह पर उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति एक तालाब के किनारे बैठकर उस धूप में बैठकर मछलियां पकड़ रहा है, छोटी जैसा आता है ना उसमें। तब उसको देखते ही हनुमान प्रसाद जी ने सोचा कि अरे इस उम्र में भी ये पाप कर रहा है, वृद्धावस्था में भी पाप से मुक्त नहीं हुआ, इसकी क्या दुर्गति होगी। तो साधु ये हृदय में करुणा आई, गाड़ी रुकवाई और गए उतरकर चल के उसके पास और कहा कि आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह पाप है, जीवों की हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। तो कि हाँ जानता हूं, तो फिर भी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरा परिवार ही इससे चलता है, इस मछलियों को बेचकर मेरे परिवार को चलाता हूं, इसलिए मुझे पाप करना पड़ता है परिवार के लिए। तब हनुमान प्रसाद जी कहते कि आपको जो धन इस मछलियों को बेचने से जो पैसा मिलता है उतना पैसा मैं आपको ऐसे ही दे दूं तो आप, मैं कहूंगा ऐसा करेंगे? एकदम आपको कुछ करना नहीं, एकदम आराम से रहना है, बस मैं कहूँ उतना? क्या तब तो क्या हूँ प्रश्न है, मुझे मेरा पैसा मिल जाए तो क्या, चलो मेरे साथ। उसको बिठाया गाड़ी में और अपने आश्रम में ले गए और वहां पर जाकर उसको कहा कि आपको यहाँ पर रहना है, यहाँ पे आपको तीन समय प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खाना है और आराम कीजिए और बाकी के समय ये लीजिए माला जोली, बैठकर भगवान का पवित्र नाम जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और आपका जो धन है वो आपके परिवार वाले को पहुंच जाएगा। और कितनी, अब कितनी सुविधा, हम कहाँ पर धूप में बैठकर मछलियां पकड़ रहा था और एकदम आराम से छत के नीचे पंखे के हवा में बैठकर बस तीन टाइम प्रसाद फ्री में मिलेगा और बैठकर भगवान का नाम जपना है और आराम से रहना है। तो थोड़े दिन तो रहा वो, बाद में एक दिन भाई श्री के सेवकों ने कहा कि महाराज ये बूढ़ा अब रहने वाला नहीं है यहाँ पर, क्यों? ये हर रोज यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा है। तो बुलाया उसको हनुमान प्रसाद जी ने कि कहा कि आपको यहाँ पे कुछ तकलीफ है कि नहीं, भोजन इत्यादि प्रसाद ठीक है? हाँ ठीक है, कुछ परेशानी नहीं है? तो नहीं, तो फिर आप यहाँ से जाना क्यों चाहते हैं? तब उसने कहा कि अब क्या छुपाना, मुझे यहाँ पे घबराहट हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये लो आपका माला झोली, मुझे नहीं रहना है, छोड़कर भाग गया सीधा। जितनी सुविधा दी, इसलिए कहते कि ऐसे रजोगुणी और तमोगुणी जीवों को भजन अच्छा नहीं लगता है, चाहे जितना भी आपको समझाओ। चला गया, फिर वहां पर बैठकर जाकर मछलियां पकड़ने लगा। इसलिए कहते कि जिसकी प्रकृति तमोगुणी हो गई उससे कुछ भजन भक्ति होगा नहीं, प्रयास करने पर भी। रावण ने तो रामायण में अपना अनुभव बताया है, जब खरदूषण को भगवान रामचंद्र ने मार दिया और जब यह समाचार रावण को मिला तो रावण क्या सोचता है कि खरदूषण को मार दिया, सुर नर मुनि असुर नाग किन्नर किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मेरे एक छोटे से सेवक को भी मार सके, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरे छोटे से छोटे एक सेवक को मार सके, और ये खरदूषण तो बल में मेरे समान थे और उसको मार दिया। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तो लगता है कि निश्चित भगवान इस संसार में प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान के बिना तिनको को मार ही बिनु भगवंता, भगवान के सिवा खरदूषण को कौन मार सकता है? और रावण तो था ही, वेदों का इस समय का सबसे बड़ा पंडित माना जाता था, तो वेदों को जानता था, इसलिए समझ गया कि लगता है कि भगवान के अवतार का समय आ गया और वो प्रकट हो गए और उसी ने खरदूषण को मारा है, तब तो अवश्य मैं उस भगवान को उसके पास जाकर उसको प्राप्त कर लूंगा। लेकिन फिर सोचता है कि भगवान को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, भजन, और भजन तो मुझसे होगा नहीं। हो ही न भजन तामस देहा, मैंने अपने शरीर को इतना तमोगुणी बना दिया है, व्यसन करके शराब इत्यादि पीकर पस्त्रियों का संग करके कुसंगियों का संग करके अपने इस शरीर को इतना तमोगुणी बना दिया है कि अब इससे भजन तो होने वाला है नहीं, क्योंकि भजन करने के लिए सात्विक बुद्धि और सात्विक देह चाहिए, अन्यथा रजोगुणी और तमोगुणी शरीर से तो इच्छा होने पर भी भजन कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान एकादश स्कंद में उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह सत्वगुण में रहे, और उसके लिए 10 वस्तुएं हैं इन 10 वस्तुओं के ऊपर आधार है कि उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति कैसी होगी। यह 10 वस्तु अगर सात्विक होगी तो उसका स्वभाव सात्विक बनेगा, अगर यह 10 वस्तु राजसिक होगी तो राजसी बनेगा, और तामसी होगी तो उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति तमोगुणी हो जाएगी। तो कहते हैं आगम आपह प्रजा देश काल कर्म च जन्म च स्वाध्याय ध्यान मंत्र अथ। यह 10 वस्तु, दसे ते गुण हेतवे, यह 10 वस्तु गुण के कारण है। उसकी व्याख्या करने का समय नहीं है हमारे पास, लेकिन यह 10 वस्तु में से व्यक्ति को चाहिए कि सात्विकान एव सेवेत पुमान सत्व विवृद्ध ये। इन 10 में से व्यक्ति को सत्व गुण को बढ़ाने के लिए सात्विक वस्तु का अवलंबन आधार लेना चाहिए, और उससे क्या होगा तो भगवान कहते कि ततः धर्म। सत्व गुण बढ़ने से व्यक्ति की धर्म में रुचि बढ़ेगी, और धर्म में रुचि बढ़ने से क्या होगा तब कहते कि ततः धर्म ततः ज्ञानम, और उस धर्म के फल स्वरूप उस जीव को ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान के फल स्वरूप ततः स्मृतिर अपोहनम च। तब जब उसको ज्ञान प्राप्त होगा तो संसार का अपोहनम विस्मरण हो जाएगा, और स्मृति मेरा स्मरण उसको निरंतर बना रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सात्विक वस्तु का सेवन। तो यहाँ पे रावण यही सोच रहा है कि मैंने तो सात्विक कुछ रहने दिया नहीं है, पूरा बिगाड़ दिया है, तमोगुणी व्यसन कर करके न खाने लायक, रास्ते में बाजार में खड़े रहकर कुछ खा लेने से, कुसंगियों का संग करने से अब इसमें कुछ शुद्धि रही नहीं है, तो भजन तो होगा नहीं। तब ऐसा सोचकर रावण तो जानता था कि भगवान का स्वभाव, सोचा कि इसके साथ वैर करूं, क्योंकि इसके हाथ से मरने वाले को भी इसकी प्राप्ति होती है, तो भजन नहीं होगा तो इसके साथ वैर कर लूं। ऐसा सोचकर रावण सीता जी को हर लाया। तो नारद जी सोच रहे हैं अपनी बात थी कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, इससे भजन भक्ति तो होगी नहीं। तब नारद जी वहां पे लिखा है, सुखदेव जी कहते कि तयोर अनुग्रहार्थम शापम दास्य, उन दोनों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शाप दिया, क्रोध करके नहीं, कि अगर आप दोनों को वस्त्र नहीं पहनना ही अच्छा लगता है तो जाइए वृक्ष हो जाइए, कपड़े पहनने की कुछ चिंता ही नहीं। प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि जो कम कपड़े पहनते हैं वो अगले जन्म में वृक्ष बनते हैं, गुजरात में बावड़िया बने। इसलिए नारद जी ने कहा कि कपड़े पहनने ही नहीं तो जाइए वृक्ष हो जाइए, लेकिन शाप तो दिया, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा अनुग्रह क्या था कि वृक्ष तो हो जाए लेकिन गोकुल में, व्रज भूमि में, और वह भी नंद महाराज के आंगन में। ये तो शाप हुआ या अनुग्रह, जिसके लिए भागवत में ब्रह्मा जी उद्धव जी इत्यादि महान महान पुरुष सब प्रार्थना करते हैं कि तद गुरी भाग्यम इह जन्म किमप्य अटव्याम यद गोकुलेपि कत्मांद्री रजोभिषेकम। ब्रह्मा जी कहते कि तद भूरी भाग्यम, हे कृष्ण अगर इस गोकुल में या तो व्रज भूमि में कहीं पर भी कत्मो कोई भी शरीर में, ऐसा नहीं मनुष्य बनाए नहीं, कत्मो भी कोई भी शरीर, पशु पक्षी कीट वृक्ष कोई भी बना दीजिए तो मैं उसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानूंगा, तद भूरी भाग्यम वही मैं अपना भूरी भाग्य समझूंगा। और उद्धव जी भी कहते हैं गुल्मलता औषधि नाम आसाम अहो चरण रेणु दिशाम। तो ये बड़े बड़े लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको नारद जी ने उस नलकुबर और मणिग्रीव को सहज में दे दिया, और कहते हैं कि तुम लोग 100 साल तक, और वह भी दिव्य देवताओं के 100 साल तक व्रज भूमि में रहोगे, और फिर भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करके फिर यहाँ पर आ जाओगे। तो कहने का कि ऐसे ही जब महात्मा लोग किसी को पाप में लगा हुआ देखते हैं तो उसके हृदय में दया करुणा आ जाती है, और इसलिए इस पांड्य देश के राजा सहस्त्राक्ष को भी दुर्वासा जी ने करुणा करके असुर तो बनाया लेकिन अनुग्रह भी किया कि कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और वही सहस्त्राक्ष राजा यह तृणावर्त नाम का असुर बना और व्रज में आकर कृष्ण के हाथ से कृष्ण के चरणों के स्पर्श से उसको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। खूब खूब धन्यवाद सभी भक्तों को, मैंने आपका कीमती समय 10 मिनट ज्यादा ले लिया और कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवत वाणी भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद
कैसे कर रहे हैं जान रखा जन्म।